अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्ति भवति नष्टिके मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं तत्कृपातमवन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम् अम्बज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मध्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीजोतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखनितं नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चात् देशतारिणे वांछाकल्पतरु वश्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेव नमो नमः महावद्यानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पञ्चतत्पादकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गुरु भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रातःकालीन भगवत कक्ष में आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन। आज बहुत ही पावन व पवित्र तिथि है कि आज चंदन यात्रा 21 दिन जावत आज से चालू होगा। पंचांग का अनुसार आज परशुराम जी का भी आविर्भाव तिथि है। हमारे जो चार युग है इसमें सत्य युग का शुरुआत आज का तिथि में हुआ था और भगवती गंगा का मर्त्यलोक में आज का तिथि में ही अवतरण हुआ था। विशेष करके ये तिथि को अक्षय तृतीया मना जाता है। कि जो भी अक्षय तिथि तृतीया तिथि को पाई तिथि में शुभ कर्म वगैरह करते हैं उसका अक्षय होता है। शिव चंदन यात्रा प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज मध्य लीला में माधवेंद्रपुरी का प्रसंग उत्थापन किए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो पुरी के लिए यात्रा किए थे उसी समय चैतन्य महाप्रभु अपना नित्य संगी पार्षद लोग को लेकर रमुणा जो खीरचोरा गोपीनाथ का मंदिर है वहाँ पर वहाँ पहुँचे थे। आप सब सुने होंगे कि माधवेंद्रपुरी के लिए एक गोपीनाथ ने खीर चोरी किए थे इसलिए उनका नाम क्या है खीर चोरा। ऐसे तो भगवान ब्रज में माखन चोर का नाम में प्रसिद्ध है। महाजन का कंठ से कई भजन का उद्गार है कि ब्रजे प्रसिद्ध हम नवनीत चोरम। यहाँ तो हम माखन चोरी किए लेकिन एक भक्त के लिए उन्होंने खीर रख दिए थे। तो इसी प्रसंग में मध्य लीला में जो है उसको हम पाठ करके श्रवण करेंगे। ऐसे तो गंगा का अवतरण दूसरा समय भी हुआ था जैसे दस अवतार सूत्र में है वामन अवतार है। वामन अवतार भगवान जब लिए थे उसी समय उन्होंने जो त्रिविक्रम रूप धारण किए थे उसी समय ये ब्रह्मांड का कटाक उन्हें भेद कर दिए तो उसी समय भी ही गंगा का अवतरण हुआ था। ऐसे शास्त्र का सिद्धांत अनुसार गंगा के बारे में विभिन्न शास्त्र में विभिन्न प्रकार का सिद्धांत है। जो भी हो आप लोग को महाभारत में एक कथा सुने होंगे कि भगीरथ जी ने ये गंगा को अमृत धाम को लेके आए थे क्योंकि ये सगर राजा का 60,000 पुत्र थे। ये पुत्र लोग अपना यज्ञ अश्व को ढूंढने के लिए ये ब्रह्मांड में चार तरफ उन्होंने ढूंढे लेकिन यज्ञ अश्व मिला नहीं क्योंकि जब असमेत यज्ञ किया जाता है शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि यज्ञ अश्व को उसका मस्तक वीर पत्रिका लेके छोड़ दिया जाता है। जब तक ये यज्ञ अश्व आपस नहीं आता है शत्रु काम हाथ से तब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं होता। लेकिन इंद्र को डर रहता अपना पद के लिए कई अश्वमेध यज्ञ सौ कर देता तो उसे इंद्र पद मिल जाता। इसलिए सगर महाराज ने जो यज्ञ चालू किए और यज्ञ अश्व हो वो चोरी करके ले गए कन ना इंद्र ने और उसको कहाँ बांध दिए ना आप गंगा सागर में जो भी भक्त लोग गए होंगे वहाँ कपड़ी मुनि का आश्रम है वहाँ बांधे के हो स्वर्ग चल दिए। लेकिन सागर राजा का 60,000 पुत्र ये ब्रह्मांड ढूंढ दिए ये घोड़ा मिला नहीं। ऐसे है कि शास्त्र में वर्णन है अभी हम जो हो सात समुद्र देखते हैं ये सागर राजा का 60,000 पुत्र खुदाई कर दिए थे उसी से भी ये समुद्र बना है। तब कपड़ी मुनि ऐसा दो कपड़ी मुनि है कपड़े है एक निरीश्वरवादी है एक सविशेषवादी जो देवहूति पुत्र कपड़ी शंख दर्शन का प्रणेता तो वहाँ तपस्या कर रहे थे। तो घोड़ा ढूंढते हुए जब वहाँ पहुँचे तो बाबा ध्यान में अपना इष्ट देव का ध्यान करते हुए ध्यान मग्न है। बहुत परेशान हो गए थे इसलिए गुस्सा में उनका बाबा का ऊपर आक्रमण कर दिया। वो जब नेत्र खुले उनका तपस्या का प्रभाव से राख बन गए। उनका वंश में पिंड दान करने के लिए कि वह एक क्रियाकर्म के लिए कह रहे हैं। कालक्रम में उनका कई पीढ़ियाँ बीत गई। दिलीप अंशुमान रघुवंश से शास्त्र में इसे वर्णन आता है कि भगीरथ दो माताओं का संयोग से पैदा हुए थे। ये विचित्र बात है कि अजीब जैसे बात होता है। जो दो माता हैं जो वो वंश परंपरा को चलाने के लिए शंकर भगवान का आराधना किए थे, तब शंकर भगवान उनको बतलाए कि बिना संगम से पुत्र उत्पादन हो रहे ही न सकता। दो रानी आप संगम करें तब तो पुत्र उत्पादन होगा और फिर गंगा को उन्हें नहीं कहेंगे। शंकर भगवान का निर्देश अनुसार दो रानी संगम किए तब भगीरथ का जन्म हुआ। पहले भगीरथ नाम नहीं था, एक मांस पिंड का जन्म दिए दो रानी। तो उन्होंने देखे कि ये तो पुत्र संतान इस मांस का पिंडड़ा है, तो उन्होंने किया कि रास्ता में छोड़ के चल दिए। उसी समय देवो से अष्टावक्रन मुनि आ रहे थे, देखे कि वो मांस का पिंडड़ा हिल रहा है, तो बाबा नाराज हो गए। क्यों? कि उन्होंने मेरे को बैंक कर रहा है ऐसे सोचे। तो उन्होंने बतलाया कि सही में तुम्हारा स्वरूप ऐसे है तो आप नवजवान हो जा सकते हो और नहीं तो वो भस्म हो जाओगे। लेकिन उनका स्वरूप ही मांस पिंड था, इसलिए अष्टावक्र मुनि का आशीर्वाद से भगीरथ साथ साथ नव युवक में परिणत हो गए। तो भगीरथ ने बहुत कड़ी तपस्या की शंकर भगवान का, तो फिर उन्होंने फिर गंगा को दिए और गंगा जब आए उसको धारण करने के लिए भी ये पृथ्वी लोक में कई इंसान नहीं थे, इसलिए शंकर भगवान ही उसको धारण किए थे। जो वो स्वर्ग से उन्होंने आए, अरे कई साल जटा में घूमते रहे। फिर शंकर भगवान को संतुष्ट करने के बाद हिमालय में आके गिरा। जब वहाँ गिरा तो उन्हों वो गंगा को रास्ता नहीं मिल रहा था, तो फिर भगीरथ ने इंद्र को संतुष्ट किए। इंद्र संतुष्ट होने के बाद अपना ऐरावत हस्ती को दे दिए। ऐरावत हस्ती कामांड था, गंगा को उपभोग करने का उनका इच्छा हुई, तो उन्हें एक शर्त कर दी। क्यों? गंगा हमारे साथ समागम करेंगे एक रात्रि, तो मैं जाके ये विंध्य पर्वत का और दर्प को चूर्ण करके मैं रास्ता बना दूंगा। तो भगीरथ ने फिर आपस चल दिए है गंगा माता के पास। तो गंगा माता के पास जाके लज्जा का मारे उन्होंने कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। क्यों? कि माता का पास पुत्र कैसे ऐसे बात बता सकते हैं। लेकिन गंगा बतलाए कि तुम निस्संकोच से बात का बताइए और शर्मा मत। तो गंगा को ये बात बता दिए, तो गंगा माता बोले ठीक है मैं सहमत हूँ, उनको बताओ कि ये विंध्य पर्वत का रास्ता व कैनाल बना दे। तो अपना दांत से ये विंध्य पर्वत का रास्ता बना दे। तो गंगा इतना तेज से आए, इतना तेज से आए कि एक ऐरावत को पूरा डुबाते हुए उसका हालत गंभीर कर दी। तब तो उन्होंने फिर ठिकाना में आ गए, फिर गंगा का शरण में आए। तो गंगा माता फिर उसको माफ कर दी। तो गंगा माता बहती हुई फिर मायापुर धाम में जनु मुनि का आश्रम में भी आए। जनु मुनि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। गंगा माता इतना तीव्र गति से आए कि उसका लुटा कमंडलू आश्रम वगैरह भी उठा दिए। तो बाबा आप पीछे हट के देखेंगे तो हमारा लूटा कमंडलू है ही नहीं और आश्रम भी नहीं, देखिए किसका करामत है, तो देखेंगे गंगा का। तो उन्होंने क्या किए ना, गंगा माता को पान कर लिया, क्योंकि भगीरथ महाराज शंख बजाते हुए आगे चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा माता चल दिए थे। अब पीछे देखे कि गंगा माता का कोई नाम निशाना ही नहीं, तो वहाँ पर देखे क्या है ना, जन्नू मुनि वहाँ तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने समझ लिया कि बाबा का ही करामत होगा, तो बाबा को फिर तपस्या संतुष्ट करके फिर गंगा को जन्नू मुनि ने अपना ये नौ द्वार से कोई भी द्वार से उन्हें निकलने, उन्हें अपना जांग फाड़ के बाद जानू को फाड़ के निकले थे, इसलिए उनका नाम जानना भी है। और एक नाम में भागीरथी भी है और एक नाम पतितपावनी भी है। जब रामचंद्र भगवान वनवास के लिए रवाना हुए थे तो उसी समय केवट ने भगवान का पाद पद्म पखाड़ किए थे, एक शर्त से कि हम कि मैं आपका पाद पखाड़न करूँगा तब और आपको पार करूँगा, क्योंकि उन्हें सुने थे कि पहले अहिल्या को उन्होंने उद्धार किए, क्योंकि भगवान का माया से सभी लोग मोहित हो जाते हैं। तो केवट ने सुना था कि ये पत्थर का ऊपर चरण पाद पद्म दे के भगवान उसको उद्धार कर दिए, एक नारी बना दिए, तो उन्होंने एक शर्त में उनको नौका में बैठाई थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि रामचंद्र भगवान है। तो उसी से उनका नाम भी एक पतितपा बनी है। जो भी हो, गंगा माता ये सगर वंश का उद्धार करने के लिए ये भगीरथ का तपस्या से ये आज का तिथि में उन्होंने अवतरण हुआ था। और परशुराम का बारे में आप तो जानते हैं कि उन्होंने 21 बार ये पृथ्वी को क्षत्रिय कर दिए थे, क्योंकि क्षत्रिय राजा लोग उसमें ये जगत में हल्का मचा के रखते हैं, कोई वेद निषेध का उन्होंने मान नहीं रहते, इसलिए क्षत्रिय रुधिरमय जगत पगत पापम स्नपयमी पयसी समित भावतापम केशव धृत भगुपति रूप जय जगदीश हरे। जैसे आप सुने हैं कि जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का उत्थान होता है, तब भगवान आते हैं। तो 27 अवतार का हिसाब से 21 बार उन्होंने निक्षित्र कर दिए थे एवं बहुत बड़े यज्ञ भी किए थे कुरुक्षेत्र में। उसका बाद उन्होंने अभी भी महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, और जो 7 चिरंजीवी है उसमें परशुराम जी एक है। और आप सुने हैं कर्तव्य अर्जुन का बस सहसा अर्जुन का साथ लड़ाई हुआ, क्योंकि जमादग्नि को हत्या कर दिए थे। उस समय उनका माता ने 21 बार पुकारे थे परशुराम, इसी वजह से उन्हें 21 बार निक्षत्रि कर दिए। अभी भी परशुराम जी महेंद्र पर्वत में हैं, तपस्या करते हैं। आप रामायण में देखे होंगे कि जब भगवान का रामचंद्र भगवान सीता का स्वयंवर में गए थे, जब वो शिव धनुष तोड़ दिए उसी समय प्रकट हुए थे। लेकिन कल्प भेद में अलग है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है कि रामचंद्र भगवान जब सीता को स्वयंवर में जीत लिए वहाँ धनुष को तोड़ने के बाद, और 4 भाई को जनक महाराज और उनका भाई का जो कन्या थे प्रदान कर दिए, एवं दशरथ महाराज समय तो जब लौट रहे थे तो रास्ता में परशुराम ने रुक लिए थे। जैसे क्षत्रिय कुल में थे तो उन्होंने रास्ता में रुक के हमला कर दिए। दशरथ महाराज वात्सल्य भाव होने के नाते उन्होंने बहुत ही बाकड़ थे, लेकिन रामचंद्र भगवान मर्जा पुरुषोत्तम रूप में उनका दर्प चूर्ण कर दिए। उन्होंने इतना भी बता दिए कि परशुराम जी ने, अरे कितना दिन से सड़ा हुआ धनुष को तुम तोड़ दिया, मेरा धनुष में तुम तरपजाबा तोड़ दे सकते हो तो मैं मान ले सकता हूँ, क्योंकि उनका अभी अंतिम समय था, मतलब वही धराधाम में जितना भी काम करना था वो हो चुका था। इसलिए रामचंद्र भगवान उनका हाथ से जब धनुष लिए तो उनका सारा समस्त शक्ति हर लिए। जैसे आप सुने होंगे महाभारत युद्ध हो गया तब अर्जुन जो भगवान कृष्ण के पास गए थे, जरासंध जब तीर मार दिए थे जिसमें भगवान तड़प रहे थे, जब तीर वहाँ से निकाले भगवान का पास से पैर से तो भगवान उनका समस्त शक्ति हर ली। क्योंकि जो महिषी लोग को लेके आ रहे थे बीच में भगवान ही ये जंगल का इंसान बन के अर्जुन का हाथ से ये महिषी लोग को तो हर लिया। कोई टीकाकार का अनुसार कहा जाता है कि भगवान का जो नित्य संगिनी उनको राक्षस लोगों के बाद दूसरा आदमी स्पर्श कैसे कर सकता है, तो भगवान ही ग्वाला जंगल का आदमी बन के आए थे। तो इससे पता चलता है कि भगवान अपना विभिन्न लीला का माध्यम से विभिन्न प्रकार लीला सम्मान करते हैं। जो भी हो तो हो, आज जो विशेष महोत्सव का बारे में उल्लेख है कि चंदन यात्रा, तो चैतन्य महाप्रभु जब वो रेमुणा में आए थे, मैं जो पहले बोला था, तो उसी में चैतन्य चैतन्य में इसे वर्णन है कि पहले उन्होंने ईश्वरपुरी से रेमुणा में रेमुणा का लीला व चंदन यात्रा का लीला सुने थे, तो उसको अपना जो भक्त लोग थे उनका सम्मुख में चैतन्य महाप्रभु को फिर बखान किए थे, तो उसको हम लोग थोड़ा पाठ करके श्रवण करेंगे। जस्मे दातु खिर चोरयंग भांडम गोपीनाथ खिर चोरा विभूतम श्री गोपाल पाद राशिदम सन जत प्रेमणाम जम माधवपुरे न तस्मे। मैं उन माधवपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर लिया और तत्पता स्वयं खीर चुरा कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। आप सुने हैं कि हमारे परंपरा में माधवेंद्रपुरी एक आचार्य है, बहुत ही विरक्त सन्यासी थे, उनका वृत्ति था अजाचक, उन्हें कभी ही किससे कुछ नहीं मांगने नहीं थे। तो एक बार उन्होंने घूमते हुए आए थे एक गोवर्धन गिराज का निकट गोबर्धकंड में भजन कर रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण ए बाल गोपाल रूप में आए। खाली आए नहीं, क्योंकि उन्होंने अजाचक वृत्ति था उनका, और भगवान बतलाए कि जो भक्त के पास है उसको मैं रखा करता हूँ, जो नहीं है उसको देता हूँ। तो उनका अजाचक वृत्ति से उनका बहुत निष्ठा था, इसलिए गोपाल जी क्या किए ना दूध लेके आए और माधवेंद्रपुरी से बतलाया उन्होंने, अरे माधवेंद्रपुरी तो मांगने क्यों नहीं जाते हो, क्यों उपवास करते रहते हो। तो माधवेंद्रपुरी ने बतलाया कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं उपवास करता हूँ। तो गोपाल ने उनको बतलाया कि देखो यहाँ पानी लेने कोई माताएं आए थे तो उन्होंने बतला दिया। तो भगवान का ये भुवन मन रूप से उन्होंने मुग्ध हो गए थे कि भगवान ये दूध देने के बहाना से माधवेंद्र को पुरी को आज दर्शन दिए। तो उनका रूप को निहारते रहे, तो गोपाल ने बोला देखो मेरा और भी कुछ काम है, क्योंकि हमको वो उधार निकालना है, ये दूध पी लो और हर दिन उपवास नहीं करने का, क्योंकि हमारे यहाँ कोई उपवासी नहीं रहता है, कोई मांग के खाता। ये बोल के भगवान वहाँ से फिर अप्रकट हो गए। तो दूध दूध लेके उन्होंने पान किए, ये दूध पान करते ही उनका अष्ट सत्य की विकार हुआ। हम लोग सुबह गुरुवाष्टकों में बताते हैं रोमांचक कंपास हो तरंगो भाग, उन्हें भाव भीड़ होकर नाचने लगे। इतना ही नहीं, वो जो दूध का जो भंड था उसको साफा करके अपना उत्तरी बस्तर में बांध लिए। शास्त्र में इसे कृष्णदास कविराज ऐसे वर्णन करते हैं कि उसको एक टुकड़ा हर दिन खिला करते थे। उनका श्रद्धा कैसे देखिए, तो गुरुराज गोवर्धन में एक कुंज में वज्रनाभ का जो स्थापित विग्रह गोपाल जी कई साल से वहाँ पड़ा रहा था, क्योंकि जो वो जबन राक्षस लोग का उत्पात हुआ वहाँ पर, पुजारी ने उनको वो छुपा के चल दिए थे। तो रात में जो ना माधवेंद्रपुरी को थोड़ा झुक के आई तो गोपाल ने उनको बतलाया कि बहुत दिन से मैं ठंडा गर्मी सर्दी से परेशान हूँ, अरे मेरा पुजारी मेरा को छुपा के यहाँ चल दिया, क्योंकि हमेशा लग ये राक्षस लोग का उत्पात होता ही रहता भक्त का ऊपर, तब भगवान प्रकट होते हैं। और इतना ही नहीं, ये गोपाल जी ने ये माधवेंद्रपुरी को हाथ में पकड़ करके कुंज में ले गए, दिखाया उन्होंने और बतलाए कि तुम मेरा को यहाँ से निकाल के और ऊपर में एक मंदिर बना के वहाँ स्थापन कर दो, क्योंकि ये पति जीव को उद्धार करने के लिए मैं वहाँ विराजमान रहूँगा। तो माधवेंद्रपुरी जो वो सुबह उठे ये सपनों का, तो उनको ये आदेश था, गांव में गए और ग्रामवासी बा ब्रजवासी लोग को बुला लिए और कुल्हाड़ी और कुदाल लेके उन्होंने ये निघंच जंगल को सफाई किए और घास बालू में नीचे गड़ा हुआ था ये गोपाल जी, उसको वो फिर वहाँ से निकाल कर वरिष्ठ भक्त लेकर फिर कोई सारे पत्थर दे के उनको फिर सिंहासन बना के वहाँ रख दिए एवं अभिषेक महोत्सव हुआ, बहुत भारी उत्सव हुआ। उसका बाद गोपाल जी का 56 भोग लगा दिए और उस समय जैसे हमारे भी यहाँ भक्तों लोग आनंद से नाचते गाते हैं ऐसे वहाँ भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया है। और को जो ब्राह्मण लोग को उन्होंने दीक्षित भी कर लिए, उसका सेवा फिर और दैनंदिन चालू रहा। सुने कि गोपाल प्रकट हो गया तो आसपास का जितना भी भक्त हुए सब आ गए और धनी व्यक्ति लोग भी आए, हर दिन ये महोत्सव चालू हुआ। लगभग कितना साल तक, 2 साल तक उसमें चैतन्य चैतन्यमृत बनाने, 2 साल तक ऐसे ही अन्नकूट महोत्सव चालू रहा। तो फिर गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को फिर सपने में बतलाया। माधवेंद्रपुरी कितना भाग्यशाली है कि 3-3 बार भगवान उनको सपनों में आए। तो गोपाल जी ने बतलाया, देखो मेरा को अरे चंदन का लेप करो, क्योंकि मेरा शरीर में तुम जितना भी अभिषेक किया उसमें ताप मिटता नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी गोपाल का निर्देश से और रोना हो गए। देखिए भक्त भगवान का संतुष्टि के लिए क्या नहीं कर सकते, चंदन के लिए उन्होंने फिर कहाँ तक ना, हाँ शांतिपुर आए वृंदावन से, लगभग यहाँ से 1600-1700 किलोमीटर है पूरी, यहाँ से पैदल उन्हें जाएंगे। जैसे आप उत्कल एक्सप्रेस में भी जाएंगे 40 घंटा से कम नहीं होगा। तो माधवेंद्रपुरी यहाँ से शांतिपुर आए, शांतिपुर में फिर अद्वैताचार्य को ने दीक्षा भी प्रदान किए और वहाँ से होकर उन्होंने आके कहाँ पहुँचे ना खीरचरा गोपीनाथ में, जो कि खीरचरा नाम से वो नामित है, जो विग्रह थे रामचंद्र भगवान ने वनवास का समय में अपना तीर से बनाए थे जानकी के लिए, क्योंकि वहाँ जब पहुँचे थे भगवान एक ग्वाला और गायों का दर्शन करके बहुत हर्षित हुए। उसी समय जानकी ने बतलाई कि आप क्यों हंस रहे, तो रामचंद्र भगवान बोले कि आगे मैं अरा ग्वाला लोक में लीला करूँगा। तो एक गोपाल का नाम सुनते ही जानकी जी ने फिर उनका विग्रह तैयारी करने के लिए बतलाया था। तो रामचंद्र भगवान ने अभी जो खीरचूरा हम देखते हैं, भगवान स्वयं अपना हाथ से तीर से उनको प्रकट किए थे, ऐसे कि जो वो उनका और नेत्र कमल बनाए उसे रक्त का भी और उद्गार हुआ था, तब से उन्हें बंद कर देते। काल क्रम में वहाँ पर ब्रह्मा जी भी पूजित किए, उसका बाद फिर एक राजा है नरसिंह देव, उन्होंने पूजा किए। तो कालक्रम से अभी हम लोग जो देखते हैं कि अभी परंपरा धारा से पूजित हो रहा है। तो माधवेंद्रपुरी जब वो वहाँ पहुँचे थे और शाम का समय हमारा जैसे शरणार्थी का पहले भोग लगता है खीर का, तो वहाँ भी आरद 12 अमृत के लिए नामक खीर भोग लगता है। तो माधवेंद्रपुरी ने पुजारी को पूछे कि यहाँ पर शरणार्थी में क्या भोग लगता है, तो उन्होंने बतला दिया कि 12 अमृत के लिए भोग लगता है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा प्रसाद यदि मिल जाता तो मेरा गोपाल के लिए मैं बनाता हूँ। देखिए अजाचत वृत्ति था उनका, फिर भी आज उनका खाने के जब इच्छा हो गया उन्होंने पर विष्णु विष्णु बल के स्मरण किया, क्योंकि भोग का पहले इच्छा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा साधारणतः इस कन में जो पुजारी लोग भक्त लोग प्रसाद लेने का बाद ही भोग का पारस बनाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी इसमें है प्रभुपाद लिखते हैं कि यह परमहंस था अर्थात सन्यासी की सर्वोच्च अवस्था थी। सन्यासी द्वार द्वार भिक्षा मांगकर भोजन एकत्र करता है, किंतु परमहंस जिसने अजाति वृत्तिया अजगर वृत्ति धारण की थी वो किसी के भोजन नहीं मांगता, यदि कोई ही स्वेच्छा से उसे भोजन देता है तो वह ग्रहण करता है। अजाति वृत्ति का अर्थ है भिक्षा न मांगना। अजगर वृत्ति इस व्यक्ति को सूचित करती है जो अजगर समान है और भोजन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, अपितु भोजन के स्वतः अपने मुख तक अनेक प्रत्यक्षा करता है। दूसरे शब्द में परमहंस बिना खाया सोए एकमात्र भगवान का सेवा में लगे रहता है। छह गोस्वामी के विषय में कहा जाता है निद्रा हार विजिता हो, वह परमहंस अवस्था में मनुष्य नींद भोजन तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह सदैव अत्यंत दैन्य भाव से दिन रात भगवान का सेवा में लगे रहते हैं, साधु होता है। माधवेंद्रपुरी ने यह परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली थी। प्रमामृत तृप्त खुदा तृष्णा नहीं बाधे, खीर इच्छा है लतारे माने अपराधे। माधवेंद्रपुरी जैसे परमहंस सदैव भगवान के प्रेमा भक्ति में संतुष्ट रहता था, भौतिक सुख प्यास उनके कार्यकलाप में बाधक नहीं बन सकते। जब उन्हें अर्चा विरह को अर्पित थोड़ी सी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उसने अपराध हुआ है, क्योंकि वे अर्चा विग्रह को भोग लगाई जा रहे वस्तु को खाना चाह रहे थे। गामेर सुन्न हाटे बसी करे न कीर्तन यथा पुजारी कराइल ठाकुर शयन। तब शयन आरती का पहले भोग लग गया एवं आरती का बाद पुजारी ने भगवान को शयन कर दिए एवं सहन करके अपना सहन करके चल दिए। और उसका बाद किया हुआ ना, भगवान ये माधवपुंडरपुरी के लिए अपना धड़ा का नीचे एक आरा खीर का भंड रख दिया। किंतु वो पुजारी भगवान का माया से मोहित थे, इसलिए बारह को नहीं देखे, वो एगार लेके चल दिए। निज कृत्य करी पुजारी करिला शयन, स्वप्ने ठाकुर आसी बोलिला वचन। तो तीसरा बार माधवेन्द्रपुरी को ये गोपाल ने फिर स्वप्न में बता रहा है, उठ पुजारी करो दार विमोचन, खीर एक राखी आछी सन्यासी कारण। पुजारी जी आप उठ जाइए, मैं माधवेन्द्रपुरी व सन्यासी के लिए एक खीर भांड छुपा के रखा हूँ। धड़ार अंचड़ ढाका एक खीर है, तुम्हारे ना जानिला सहा अमार माया। मैं सन्यासी के लिए व भक्त के लिए एक एक कटोरा खीर वो छुपा के रखा हूँ, आर मेरा माया से तुमको और जानकारी नहीं हुआ। माधवपुरी सन्यासिया से हटे ते बसिया, ताते तो एक खीर शीघ्र दे हलया। अभी वहाँ हाट नहीं है, एक बरगद का पेड़ है, माधवेन्द्रपुरी का समाधि भी है, तो उसी जगह में उन्होंने बैठे हुए थे। तो उन्होंने बतला दिए है कि वो हाट में बाबा बैठ के भजन कर रहा है, उसको आप खीर भांड दे के ले आए। सपना देखी पुजारी उठी करेला विचार, स्नान करे कपाट खुली मुक्त कैल द्वार। जो सपना देखे पुजारी जी ने, तो वो उठ के फिर स्नान किए एवं जाकर मंदिर का दरवाजा खोले। धड़ार अंतड़े तड़े पाइल सही खीर, स्नान लेपी खीर लिया हैल बाहिर। तो प्रसाद लेने का, वो जो प्रसाद भंड को वहाँ से लेने के बाद उसको फिर पूछा लगा दिए, क्योंकि जहाँ पर भोग रहता है उसको रखा जाता है उसको, और फिर दोबारा भोग लगाने से वो भी भोग का साथ समान हो जाए, इसलिए उसको पूछा लगा दिए। खीर लो ऐ जार नाम माधवपुरी, तुम्हारा लगी गोपीनाथ खीर कैल चोरी। तो पुजारी जी ने माधवपुरी माधवपुरी का नाम से पुकारे, कोई यहाँ पर माधवेन्द्रपुरी नाम से है तो एक खीर भांडा आप ले लीजिए। खीर लया सुखे तुम्हें करो भक्कने, तुम्हार सम भाग्य नहीं त्रिभुवने। तर पुजारी ने बोला है कि माधवेन्द्रपुरी आपका जैसे भाग्यवान ये जगह पे कोई नहीं है, आप एक खीर लेके भोजन करो। इत सुनी पुरी गोसाई परिचय दिल, खीर दिया पुजारी तारे दंडवत कैल। तो खुद को तो पहचान नहीं थे, तो माधवेन्द्रपुरी बोले कि मेरा ही नाम है माधवेन्द्रपुरी। तो जो परिचय दिए तो पुजारी उनको खीर प्रसाद दे के दंडवत प्रणाम किए। प्रेम देखी सेवक कहे हया विस्मित, कृष्ण जे यार बस हए जथचित। तो पुजारी ने मन में सोचे कि माधवेन्द्रपुरी कितना बड़े भक्त हैं, कि उनका बस में भगवान अवश्य ही है, क्योंकि उनका लिए एक खीर भांड चोरी करके रखे। एत बलि नमस्करी करेला आगमन, आबे से करेला पूरी से खीर भक्षण। तो जो खीर प्रसाद पाने के बाद उन्होंने भावावेश में ये प्रसाद को ग्रहण कर लिए। हम लोग हर दिन मंत्र बताते हैं प्रसाद का, पहले महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णव, ये चार बराबर है। और अंतिम परा में हम क्या बताते हैं, से अन्ना मृत पाओ राधा कृष्ण गुनो गाओ। तो माधवेन्द्रपुरी इसका मूर्त विग्रह है। शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि माधवेन्द्रपुरी एकला ही रहते थे हमेशा, कोई दूसरा से नहीं मिलते थे। क्यों कि दूसरा हो जाएगा तो फिर प्रजड़प चालू हो जाएगा। प्रतिदिन एक कहानी करे ना भक्कण, खाई ले प्रेमा वैस है अद्भुत कथन। जो पहले मैं बताया था, इसे यहाँ का जो मूर्त भांड रखे थे इसे, उसको एक टुकड़ा उन्होंने हर दिन खाया करते थे। ठाकुर मरे खीर दिल लोके सब सुनी, दिन दिने लोके भीड़ हवे मोरे प्रतिष्ठा जानी। माधवेन्द्रपुरी इतना विरक्त थे, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा अभिमानम सुरापानम त्रय तदित हरि भजत। ये प्रतिष्ठा ये स्वयर का जो विष्टा है उसका बराबर है। ये प्रतिष्ठा होगा इसलिए माधवेंद्र पुनि ये रात ही ये रमणा छोड़ के बा खीराचर गोपीनाथ को छोड़ के चल दिए कहाँ पुरी। चली चली आईला पुरी श्री नीलाचल जगन्नाथ देखी हैला प्रेमे ते बिहल। जो जगन्नाथ भगवान को उन्होंने दर्शन किए तो उनका अष्ट सात्विक विकार से भाव में तो विभोर थे ही, तो वहाँ फिर नाचने कूदने लगे। प्रेमा में से उठे पड़े हंसे नाचे गाए जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए। तो जगन्नाथ को दर्शन करते उन्हें नाचे गाए और कभी ही नीचे गिर जाते थे और जगन्नाथ को दर्शन करके उन्हें बहुत सुख प्राप्त किए। माधवपुरी श्रीपाद आइलो लोके हैलो ख्याति सब लोग आसी तारे करे वो भक्ति। उन्होंने प्रतिष्ठा का डर से यहाँ चल दिए क्योंकि सुबह जी सुने कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपाल जी ने खीर चुरू किए थे तो सबको आए के फिर बाबा को पैर छुएंगे कृपा का जाचना करेंगे और सब जय जय करेंगे, इसीलिए ये प्रतिष्ठा से भक्ति नष्ट होती है। इसीलिए प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा अभिमानम सुरापान, ये जो अभिमान करना ये शराब पीना का बराबर। त्रय तजत हरि भजत, ये तीन को छोड़ के हरि की भजना करना चाहिए। लेकिन भक्त को प्रतिष्ठा छोड़ता नहीं, इसीलिए माधवेंद्र पूरी वहाँ पहुँचने का पहले से ही सब हला हो चुका था कि बहुत बड़े भक्त आ रहे हैं। भगवान भक्त को जोश देना चाहते हैं। पतितार स्वभाव ही जगत देवी दिशता जेना बांधते तार है विधेता निर्मत। मनुष्य भली ही ना चाहते हो फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है। निस्संदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा समग्र विश्व में फैल जाती है। प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाइया कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाइया। ये भक्ति का वा कृष्ण प्रेम का ये स्वभाव होता है क्योंकि भक्त नहीं भी चाहता है प्रतिष्ठा फिर भी भक्त को प्रतिष्ठा छोड़ता नहीं है। यद्यपि उद्वेग होल पलायते मन ठाकुर चंदन साधन होल बंधन। लेकिन माधवेंद्र पुरी वहाँ से भी चल देने का विचार तक किए लेकिन गोपाल जी बतलाए थे कि मेरे लिए चंदन लेके आए ना, तो वो बंधन का कारण बन गया। इसी बात से पुरी से फिर और आए नहीं। जगन्नाथ सेवक जत जत कम हंत शोभा के कर लो पूरी गोपाल वृतांत। यहाँ गोपाल कैसे प्रकट हुए थे, उनको कैसे अभिषेक किए और गोपाल ने कैसे उनको सपन में और दर्शन दिए और चंदन लाने के लिए उनको ये पूरी के लिए भेज दिए, इस वृतांत जो पुजारी को बतला दिए तो पुजारी को बहुत हर्षित हुए। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्तगण आनंदे चंदन लागी करिला जतन। सभी पुजारी अभी अब कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो पंडित लोग पहले बुरा भाषा से गाली देता है लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि उन्हें सभी का सर्प मुक्ति है और भगवान का नित्य सेवक है। इसलिए पुरी हम जाते हैं तो उनका हा कटु भाषा से उद्विग्न नहीं होना चाहिए। गोपाल चंदन मागे सुनी भक्तगण अपने चंदन लागी करिला जतन। राजा पात्र सने जार जार परिचय तबे मागी कर्पूर चंदन करिला संचय। तो राज कर्मचारी से ये पुजारी लोग फिर परिचित तो थे और गोपाल का वृत्तांत जो बतला दिए पर चंदन और कर्पूर फिर माधवेंद्रपुरी के लिए इकट्ठा कर लिए। एक विप्र एक सेवक चंदन बहिते पूरी गुसाई संगे दिल संबल सहित। तो माधवेंद्र पुरी अकेले ही चंदन लेके नहीं आए, ये सात सेवक में और टोल गेट में कहीं पकड़ेंगे बल्कि और वो भी व्यवस्था कर दिए थे। दान घाटी छड़ा इते राजा पात्र द्वारे राज लेखा करी दिल पूरी गुसाई रे। कोई टोल गेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला उनको और जांच करेंगे इसलिए और कागज पत्र भी रेडी करके लेके आए थे। चलिल माधवपुरी चंदन लया कत दिले रे मुणाते उतरेला आ गया। तो पुनर्बार व पुनः माधवेंद्रपुरी ए रेमुणा में आए। गोपीनाथ चरण कहलो बहु नमस्कार प्रेमा मते नृत्य गीत करेला अपार। तो माधवेंद्रपुरी रेमुणा में आए, भगवान को धन्यवाद प्रणाम एवं प्रेमा वेश में फिर नृत्य कीर्तन किए। खीरपुरी पुरी देखी सेवक सब सम्मान करिल क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइल। पहले जैसे पुजारी को पूछे थे कितना मान खीर लगता है क्या क्या लगता है अभी, तो उन्होंने परिचित हो गए थे तो उनको फिर खीर प्रसाद दिए। से रात्रि देवालय करिल शयन शेष रात्रि होले पुरी देखिल सपन। तो रात्रि में जो मंदिर में उन्होंने शयन किए थे तो गोपीनाथ ने फिर उनको सपन में बतलाया। गोपाल आसिया को सुनो हे माधव कर्पूर चंदन आमी पाइला हम सब। तो ब्रज का जो गोपाल उनको सपने में बतलाए आप जो कर्पूर और चंदन लेके आए थे वो हमको सब मिल गया है। गोपीनाथ हमारे जे एक एक ही अंग हो यहाँ ते चंदन दिले हवे ताब खोय। तो बोले कि तुम यहाँ ही चंदन घिंच के हमारे शरीर में लगा तो हाँ हमको सब प्राप्त हो जाए। निधान भावियो ना करियो किच्छु मने विश्वास करे चंदन देव अमार वचने। तुम कोई संदेह नहीं करने का, प्रेम से हमारे और शरीर में चंदन लगाओ। ये तो बोली गोपाल गेलो गोसाई जागिलो गोपीनाथ रे सेवक गणे डाकिया आनिल। ये स्वप्न का वृतांत फिर गोपीनाथ जी का सेवक रूपा पुजारी को बतलाया और प्रभुर आज्ञा होलो ये कर्पूर चंदन गोपीनाथ रे अंगे नित्य कर लेपन। भगवान का आदेश है ये कर्पूर चंदन जो है भगवान का शरीर में हर दिन लेप किया जाए। या ते चंदन दिले गोपाल होइबे शीतल स्वतंत्र सरोतर आज्ञा जे प्रबल। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिवे चंदन सुनी आनंदित होइल सेवक रगन। तो जब सुने कि गोपीनाथ चंदन माखेंगे और लेप किया जाएगा क्योंकि हम हर दिन प्रार्थना करते हैं सेवा अधिकार दिए कर ही नहीं जाते, तो सेवक को जब सेवा मिल जाता है तो आनंद का सीमा नहीं रहता। पूरी को ए दुई घसी बे चंदन आर जना दुई दिवे से बेतन। पूरी गुसाई माधवेंद्र पुरी दोनों को चंदन घिसा में लगा दिए और दू को लगा के फिर उनको कुछ पैसा भी दिए। यही मत चंदन देह प्रत्येक घसिया पराय सेवक सब आनंदित होया। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी का चंदन घिस कर लेप किया जाता है, इससे गोपीनाथ जी का सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। तो आज से 21 दिन तक ये चंदन यात्रा कंटिन्यू चालू रहेगा। हमारे भी इसी मंदिर में बड़ा विग्रह को आज पुजारी लोग दोपहर लोग बजे 1-1.5 बजे से चंदन लेप करेंगे क्योंकि भगवान को शरीर ग्रीष्म ऋतु के कारण गर्म होता है। तो उसी लीला का स्मरण करते हुए आज भी वही परंपरा चल रहा है। तो पुरी में 21 दिन जब चंदन यात्रा चलता है और वहाँ हर दिन भगवान नरेंद्र सरोवर के लिए जो विजय विग्रह है मदमोहन रघुनाथ आदि 21 दिन यात्रा करते हैं। वहाँ बहुत भारी उत्सव होता है, तो जिन भक्त लोग जा सकते हैं आप वहाँ ये उत्सव में योगदान कर सकते हैं। प्रत्यय चंदन प्राय जब तैल अंत तथा रहल पूरी ताबत पर्यंत। जब तक ये चंदन खत्म नहीं हुआ माधवेंद्र पुरी वहाँ ही रहे। ग्रीष्म काल अंत पूरा नीला चल गेला नीला चले चतुर्मास आनंदे रहला। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से वृंदावन आए नहीं, वहाँ से फिर जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। श्रीमुख माधवपुरी अमृत चरित भक्त गणेश सुना प्रभु कहे आच्छादित। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से ये माधवेंद्रपुरी के बाद चंदन यात्रा का लीला और सुने थे तब भक्त लोग को उन्होंने बतलाए और सभी ही भक्त लोग ये लीला सुनते हुए आनंद में मग्न हुए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संग माधवपुंद्री के अमृतमय गुणों को प्रशंसा जब से भक्त सुना है उन्होंने स्वयं उसका साधन किया। प्रभु को नित्यानंद करह विचार पूरी सम भाग्य बान जगते नहीं हार। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद इसका विचार कीजिए क्योंकि पूरी सम पूरी जैसे और भाग्यवान कोई है ही नहीं। दुग्धान छले कृष्ण तारे देखा दिल तीन बार सपने आसी जारे आज्ञा कैल कि तीन ती एक 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 बार नहीं तीन तीन बार ये दूध दान स्थल में भगवान को दर्शन दिए। जार प्रेम बसे होया प्रकट होला सेवा अंगीकार करी जगते तरिला। माधवेंद्र पूरी प्रेम के भसीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करे भगवान ने सारे जगत को उद्धार किया। कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाइल आनंदे पूरी गोसाई रे प्रेम उथलिल। माधवनंदपुरी ने गोपीनाथ जी का विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार भी भगवत प्रेम में विहुल हो गए। मुसलमान द्वारा शासित भारत प्रशांत के चंदन तथा कर्पूर लेकर यात्रा करना अत्यंत असुविधाजनक था। इसी कारण माधवनंदपुरी कष्ट में पड़ सकते हैं यह गोपाल विग्रह गांत हो गया। राज कर्मचारी तो कागज पत्र उनको ठीक कर दिए थे कहीं टोल गेट में मुसलमान लोग बा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको कहीं नहीं परेशान कर सकते। फिर भी गोपाल अपना भक्त को कृपा करने के लिए एक गोपीनाथ रूम में उन्होंने ये चंदन और कर्पूर का शिकार किया। भगवान भक्त वत्सल कितना है देखिए। इसलिए साल बैग ने एक उड़िया भाषा में एक पद गाते हैं कि धेनु पछे पछे वत्सा घरे गमे खैर लोभे भकत पछरे तुई थाउ से ही भाग। जैसे बछड़ा गाया का पीछे भागता है ऐसे ही भगवान ये भक्त का पीछे हमेशा भागते रहते हैं। इसका प्रमाण क्या है ना हम माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी पाद की चंदन यात्रा महोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे।